ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सभी योग की गहन अनुभूति करने के लिए आए हैं। उसकी मूलभूत आवश्यक बातों को ध्यान पर रखते हुए जितना हम मन और बुद्धि को एकाग्र करके एक बाबा के प्यार में समाये रहेंगे, उतने योग के गहरे अच्छे अच्छे अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है। ज्ञान तो सुनते आए हो, दूसरों को भी बहुत अच्छी तरह से हम सब सुनाते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे अनुभवी मूर्त बने। और अनुभवी मूर्त बनने के लिए ही आप सब अपने अपने कार्य व्यवहार को समेट कर विशेष अपने मधुबन घर में बेहद घर में आते हो। यहाँ का वातावरण, यहाँ के पवित्र वाइब्रेशन, बाप दादा और बड़ी दादियों की, बहनों की, भाइयों की विशेष प्रकाश, उनकी शुभ भावनाएं, हर ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई नवीनता अवश्य ले आती है। वैसे तो जब से हम बाबा के बच्चे बने, विशेष पुरुषार्थ पर अटेंशन रहता ही है। पुराना अभ्यास ही है, लेकिन जो पहले दिन शुरू किया अंत तक बाबा वही पाठ पढ़ाते हैं, और उसी में पास हो गए तो पास भी तानर बन जाएंगे। और वो एक ही पुरुषार्थ है, स्वराज्य स्थिति में स्थित रहना। मैं आत्मा मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की राजा, मन और बुद्धि का भी कंट्रोलर हूँ। जितना जिसने इस आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास किया है, उसकी कर्म इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि अपने आप उसके नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में रहती है। और पार्ट बजाते हुए, संबंध निभाते हुए, हर कार्य करते हुए भी कहीं भी वो फंसती नहीं है, न्यारी और प्यारी रहती है। कर्म क्षेत्र पर हम सबको कर्म तो करने ही है। कर्म के बिना कोई भी कहे मैं रह सकता हूँ तो बाबा कहते हैं कर्म क्षेत्र पर कोई भी कर्म सन्यासी नहीं बन सकता। लेकिन कर्म करते हुए कर्म बंधन न बने, बाबा ने हम सबको इस समय ये विशेष अटेंशन दिलवाया है कि हे मेरे बच्चे, कर्म इंद्रियों का आधार लो, कर्म करो, कर्म करके कर्तापन के भान से न्यारे हो जाओ। मैं करता हूँ कर्म, कर्ता बन करके कर्म किया तो बंधन बन जाएगा। कराने वाला बाबा करा रहा है, हम सब उसके अच्छे इंस्ट्रूमेंट बन करके रहे। मैं शुरू से एक ही लक्ष्य रखकर पुरुषार्थ करता रहा हूँ, अटेंशन रखता हूँ कि कभी ये भान न आए कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, मैंने किया। बाबा करण करावनहार है और उसे अपनी नई दुनिया की स्थापना का कार्य किसी भी बच्चे के द्वारा कराना ही है। अगर वो करने का सौभाग्य मुझ आत्मा को मिला है तो मैं उसमें बहुत निमित्त भाव से, निर्माण चित्त स्थिति से हाँ जी करके उस कार्य में सहयोगी बनूं। बाबा हमें यूज कर ले, उसकी दुआएं मिल जाएंगी, उसकी आशीर्वाद मिलेगी और बहुत सहज रीति से पुरुषार्थ में हम आगे बढ़ सकेंगे। कितना भी हम पुरुषार्थ करें, आधा कल्प के फूल देहमान में रहने वाली आत्मा, 84 जन्म का चक्र लगाने वाली आत्मा, कई प्रकार के विकर्मों में दबी हुई आत्मा, कितने पाप कितने विकर्म देहमान के अधीन होकर के हम सब ने किए हैं और इस अंतिम जन्म में अंतिम समय में संपूर्ण पावन बन जाए, संपूर्ण देही अभिमानी बन जाए, जरा भी देह का अभिमान देह का भान आत्मा को परेशान न करे, ऐसे सहज योगी सहज पुरुषार्थी जीवन बने, उसके लिए जहाँ तक मेरा अपना लक्ष्य रहता है कि मैं बाबा की दुआएं ले लूं। बस ये गीत है ना, ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतरेगी गठरी पाप की। योग तो लगता है या नहीं लगता, योग लगाने में मेहनत भी है, क्योंकि अगर योग कर्म यथार्थ नहीं है, संकल्प में वो शक्ति नहीं है, तो ऐसे भले सहज योग है लेकिन योग में बैठते ही मन और बुद्धि बाहर दुनिया में सैर करने चली जाती है, बाबा तक नहीं पहुंचती। बहुत अच्छी कंट्रोलिंग पावर चाहिए, संकल्प शक्ति हमारे संपूर्ण नियंत्रण में चाहिए, है तो योग संकल्प शक्ति का ही नाम। अगर हमारी संकल्प शक्ति हमारे कंट्रोल में है, मैं आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित हूँ और मन पर संपूर्ण विजय है, जो चाहें वही सोचें और जहाँ चाहें वहीं पर मन को हम एकाग्र कर लें। बाबा हम बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं, करते होंगे आप सभी बाबा के बच्चे, अभी अभी साकार वतन में, साकार दुनिया में, साकारी शरीर में है, संकल्प करते ही आकारी वतन का अनुभव हो, उस फरिश्तों की दुनिया में आत्मा पहुंचे, वहां से न्यारी हो करके निराकारी दुनिया में चली जाए। साकारी आकारी और निराकारी दुनिया का अच्छा अभ्यास अनुभव हो, यही ड्रिल आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। और जिसने बहुत गुप्त रीति से, दिखावे का पुरुषार्थ नहीं है, बहुत गुप्त पुरुषार्थ है, कर्म करते चलते फिरते मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि संकल्प किधर जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन से बंधन आत्मा को अभी तक अपनी ओर खींच रहे हैं। अगर संकल्पों को हम चेक कर लें और इन पर हमारा कंट्रोल आ जाए तो संकल्प शक्ति से हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसको भगवान कहते हैं कि मैं इस संकल्प से नई सृष्टि रचता हूँ। इस संकल्प शक्ति पर हम सब का अपना कंट्रोल है, इसका टेंशन बहुत जरूरी है। और जिसने इस पर ध्यान दिया है कि इसको हमें अच्छा चिंतन देना है, अच्छी खुराक खिलानी है, अच्छे अच्छे विचारों में रमण करना है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, अधिक संसार समाचारों में अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये मन तो चंचल घोड़ा है। कहा है ना गीता में, भगवान बार बार भगवान को अर्जुन कहता है, ये मन बड़ा शैतान है, बड़ा चंचल है, काग्र नहीं होता, स्थिर नहीं होता, कहना नहीं मानता, ये तो घोड़े जैसे हवा जैसे उड़ता है। हम सब राजयोगी बाबा के बच्चे मन की शक्तियों को जानते हैं, मन को अच्छा चिंतन, अच्छा भोजन देते हैं, अच्छा संग देते हैं, अच्छा वातावरण देते हैं, ये मन इसका अपने कंट्रोल में आ गया तो बहुत सुंदर यात्रा कराता है। क्या नवीनता का पुरुषार्थ करेंगे, समय को तो देख रहे हो, अचानक का बहुत बड़ा खेल चल रहा है, कितनी आत्माएं अचानक शरीर छोड़ करके अपना अपना पार्ट समेट लेती हैं, अचानक चली जाती हैं। जहां ज्ञान और योग है उस पेपर को तो सहज पार कर लेते हैं, लेकिन जहां ज्ञान और योग की कमी है वहां पर क्वेश्चंस की भरमार हो जाती है। कल मुझे एक माता मिली एक जगह पर, कहती है, भाई जी मेरा बेटा भी अभी जवान बेटा, पढ़ा लिखा के उसकी शादी किया, बहू आई और उसने शरीर छोड़ दिया। ये क्या कल्याणकारी ड्रामा है, कैसे कल्याण है इसमें। मैंने कहा ज्ञान को और थोड़ा समझना, ये ड्रामा में इस समय कलयुग के अंतिम सीन में आत्माएं बहुत जल्दी जल्दी अपना हिसाब किताब चुकतू करती हैं, और हिसाब किताब चुकतू करने का साधन ये है, शरीर लेना, शरीर छोड़ना, क्योंकि बहुत पापों की गठरी है हरेक के ऊपर, और वो गठरी उतारने के लिए कलयुग का अंतिम समय है, सबको अपने अपने हिसाब चुकतू करने ही हैं, क्योंकि हरेक को वापस जाना है। अब इतना बड़ा विशाल ज्ञान जो ज्ञानदाता बाबा ने हम सबको दिया है, जिसने इस ज्ञान को यथार्थ रीति से समझा है, अपने जीवन में उतारा है, वो ड्रामा के इस हर दृश्य में अपनी स्थिति को स्थित प्रज्ञ रख सकता है, हलचल से परे रह सकता है। ज्ञानी आत्माएं भी कई ऐसे दृश्य सामने जब आते हैं तो हलचल में आ जाती हैं, अनेक प्रश्न पैदा होते हैं, क्या क्यों कैसे की उलझन में चले जाते, फुल स्टॉप लगाना बड़ा मेहनत का काम लगता है। और अगर संकल्पों को फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, एक सेकंड में ब्रेक नहीं लगती, तो नुकसान ही नुकसान है, इसलिए बहुत पावरफुल ब्रेक चाहिए। और पावरफुल ब्रेक के लिए ऐसे नहीं है आप ऊंची मंजिल पर जा रहे हैं और ब्रेक चेक न करें, उसमें आयल न हो, सूखा हो, और अचानक कोई बात आ जाए सामने और आप अपनी ब्रेक लगाने का प्रयास करें, यहाँ की बजाय वहां लगे, तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हरेक इस बात को समझने की कोशिश करना, ये ब्रेक संकल्पों को कंट्रोल करने की ब्रेक इस समय बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि कलयुग की अंतिम सीन है, और इसमें जो भी हम सब ने पिछले जन्मों में किए हैं कर्म, भले इस जन्म में कोई भी पाप नहीं हुए हैं, लेकिन अनेक जन्मों के किए हुए कर्मों का हिसाब किताब अभी योग बल से, दुआओं से और सजाओं से चुप्तु होने का समय है। जिन आत्माओं ने योग अच्छी तरह से समझा, योग बल जमा किया, योग की शक्ति से उस परिस्थिति को, आने वाले परीक्षाओं को, आने वाले हिसाब किताब को बहुत सहज पार कर सकते हैं। जिनके पास दुआओं की शक्ति है, बहुत पुण्य कर्म किए हैं, आशीर्वाद ली है, आज्ञाकारी सपूत बच्चे बन करके रहे हैं, वो भी आने वाले पेपर्स को सहज पार कर सकते हैं, चाहे शरीर का है, चाहे संबंधों का है, चाहे धन का है, चाहे प्रकृति का है, चाहे भटकती हुई आत्माओं का है। पेपर तो किसी के रूप में, किसी भी रूप में, किसी के सामने भी आ सकते हैं, लेकिन हम सब अपनी स्थिति को इतना मजबूत बनाएं, पहले से ही इसकी तैयारी करें, जो आने वाली बातें ऐसे लगे नथिंग न्यू, नई बात नहीं है। कल कल हम सबने इन बातों को पार किया है, विजयी बने हैं, साथ ही हमारा सर्वशक्तिमान बाबा है, और जिसके साथ स्वयं भगवान है, उसके लिए कोई भी बात बड़ी नहीं है। सिर्फ ध्यान देना, कोई भी बात को सोच सोच करके बड़ा नहीं बनाना, सोचना, दूसरे के आगे वर्णन कर देना, बहुत अधिक विचारों में चले जाना, बहुत प्रश्नों में उलझ जाना, माना उस बात को बहुत बड़ा रूप दे देना। हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, कोई बड़े से बड़ी बात भी आ जाए, नथिंग, पार हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके साथ स्वयं हजार भुजाओं वाला बाबा है, उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं, पार हो जाएंगे। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। बाबा का साथ लो, बाबा के हाथ का अनुभव करो। इस फूल में तो बाबा को हाथ है नहीं, लेकिन जो बाबा ने श्रीमत दी है, वो श्रीमत ही हाथ है। श्रीमत अनुसार अगर हम बच्चे सदा चल रहे हैं, अमृत वेले से रात तक श्रीमत का उल्लंघन नहीं करते, तो बाबा के हाथ और साथ का बहुत अच्छा अनुभव होता है। बातें किसके सामने नहीं आती हैं, हर एक के सामने बातें आती हैं। कोई तो उसको इतना सहज रीति से हंसते हंसते पार कर लेते हैं, और कोई उसी बात से सोच सोच करके डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम सब बाबा के बच्चों को ऐसी नवीनता संपन्न लक्ष्य लेकर के पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करें, मैं चार पांच बातें आपको अपने ऊपर ही लेकर के बता रहा हूँ। हम सब के पास पांच शक्तियां हैं, मैं इन शक्ति के रूप में ले रहा हूं। सबसे बड़ी शक्ति है स्मृति की शक्ति। अगर इस स्मृति की शक्ति, जिसको मेमोरी पावर कहते हैं, संकल्प शक्ति में स्मृतियां हैं, और अगर इस स्मृतियों को हम पास्ट को बिंदी नहीं लगाते और अच्छी स्मृतियों में रमण नहीं करते, तो हमारी स्थिति कभी भी एक रस नहीं बन सकती। इसलिए जो कुछ इन स्मृतियों में बातें भरी हुई हैं, कई माताएं भाई कह देते हैं, मुरली तो सुन लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता, भूल जाती हैं। अच्छी अच्छी बातें यहाँ सुनते हैं, बाहर जाते हैं, सब भूल जाती हैं। मेरी स्मृति बहुत कमजोर है। वास्तव में स्मृति कमजोर नहीं है, इस स्मृति के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, और जब तक उस भरे हुए बातों को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक नई स्मृतियां इसके अंदर रह नहीं सकेंगी। इसलिए आपको एक रमणीक बात सुनाता हूँ। हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी जब ज्ञान में आए थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत शास्त्र पढ़े हुए थे, बाबा ने पहले ही कहा, बच्चे तुम्हारी बुद्धि में जो ये भूसा भरा हुआ है, इसको पहले निकालो। जो बहुत कुछ पढ़ा है, इधर उधर की बातें शास्त्रों की, वेदों की, अंदर अंदर चलती रहती हैं, जब तक इस भूसे को नहीं जलाओगे, जब तक इसको नहीं हटाओगे, तब तक परमात्म महावाक के बाबा की बातों को समझ नहीं सकोगे, स्मृति में नहीं रहेंगी। इसलिए चलो ठीक है, हम लोगों की स्लेट जो है बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं भरा पड़ा है, लेकिन कई ऐसी स्मृतियां हैं जो ऐसे कर्म हो गए हैं, कोई ऐसे संस्कारों के अनुसार विकर्म बन गए, उनकी स्मृतियां व्यक्ति भूल नहीं पाता। कई ऐसे संबंध बनाए हैं उनकी स्मृतियां हैं, कई ऐसे कार्य हुए हैं उनकी स्मृतियां हैं, और उन्हीं स्मृतियों में सारा टाइम चिंतन चिंतन चलता रहता है। उसको पहले फुल स्टॉप लगाओ, ब्रेक दो, बीती को चितो नहीं, जो बीत गया बिंदी लगा दो, बस अभी उन बातों को मन के दर्पण पर बार बार स्मृति में नहीं लाना है। बाबा जो स्मृतियां दे रहे हैं कि आप एक आत्मा हो, आप परम धाम घर से आई हो, सृष्टि एक नाटकशाला है जिसमें हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट दूसरे के पार्ट से नहीं मिल सकता, खिलाड़ी बनकर के खेल खेलो, ये संबंध पार्टधारी पार्ट बजाने के लिए मिले हैं, ये मेरे नहीं है। अगर तुमने मेरेपन को नहीं समाप्त किया, मेरे हैं तो मेरा ही दुख देने वाला है, इसलिए कोई भी मेरे नहीं है, केवल सेवा साथी मिले हैं, सेवा कर रहे हैं, उससे अलग हो करके देखो इस आत्मा का कितना अच्छा पार्ट है। ड्रामा में नाटक में अगर कोई गलत पार्टधारी भी होता है, विलियन का पार्ट अगर उसका होता है, तो भी उसमें वाह वाह की जाती, बहुत अच्छा पार्ट इसने बजाया, क्यों ऐसा कर रहा है, कैसे ऐसे कर रहा है, बाबा कहता है वो भी बहुत वफादार है, जो गलत कर रहा है उसमें भी कुछ कल्याण है। अब इस बात को समझना, उसमें हमारे प्रश्न उठे, ऐसा क्यों हो रहा है, परिवार के अंदर हमने बच्चों की रचना की, दो बच्चे तीन बच्चे हुए, कोई आज्ञाकारी कोई सपूत है कोई कपूत निकलते हैं, माँ बाप अधिकार रखते हैं, अगर वो शराब पीने लगता है, कुसंग में चला जाता है, पैसा लुटाने लगता है, बुरा कुछ करता है, शादी ब्याह कोई दूसरी जाति में कर लेता है, कहना नहीं मानता है, तो माँ बाप एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोच सोच करके इतना दुखी हो जाते हैं, जैसे मेरा ही है और जहाँ ये मेरा पन है वहाँ ही दुख है। इसलिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कोई तेरा नहीं है, ये सब पार्टधारी पार्ट बजा रहे हैं, अपना अपना पार्ट बजाने दो, आपके जो कर्तव्य थे फर्ज थे वो पूरा कर दिया, आप उस स्मृतियों में अभी नहीं रहो, स्मृतियों का परिवर्तन चाहिए। और जब श्रेष्ठ स्मृतियों में आत्मा रमण करती है तो एक बाबा की स्मृति में टिक सकती है। इसलिए पहली जो स्मृतियां हैं लौकिक संबंधों की, लौकिक जवाबदारियों की, लौकिकता की, उनको पहले अलौकिक में परिवर्तन करो। हम सब अलौकिक हैं, अलौकिक माना ही सबके साथ पार्ट बजाते हुए न्यारे और प्यारे हैं, प्यारे सबके हैं लेकिन पहले देह मान से न्यारे हैं, मान से बनना है, और जितना आत्मा देह अभिमान से न्यारी रहेगी उतना सबकी प्यारी बन जाएगी। तो ध्यान देना, परिवार में रहो, घर गृहस्थ में रहो, सब कुछ करो, लेकिन बैलेंस है न्यारे और प्यारेपन का, स्मृतियों में है ये मेरे कोई नहीं, ये सब पारधारी हैं, बाबा के साथ मेरे सब संबंध है, बाबा ही मेरा संसार है, इस स्मृति में स्वरूप बन करके रहो, क्योंकि हमारा अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह सबसे नष्ट हो और एक ही स्मृति में आत्मा मग्न हो जाए, ये है हमारा गहरा पुरुषार्थ, और इस पर हरेक को अटेंशन देना है, नहीं तो मोह की रस्सियां बहुत सूक्ष्म हैं, ऐसे पता नहीं चलता मेरा कहीं मोह है, लेकिन जब ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसको भुलाना सहज नहीं होता, उसी में बुद्धि भटकती रहती है। एक साल दो साल बाबा कभी कभी रमणीकता से कहते हैं अगर कोई शरीर छोड़ देता है, जैसे बंदर का बच्चा अगर मर जाता है तो बंदर उस मुर्दे को भी छाती से चिपकाए हुए घूमता रहता है, उसको जब तक हड्डियां नहीं गिरने लगती तब तक छोड़ता नहीं, इतना मोह होता है। ऐसे ही मेरे बच्चों में भी कहीं ऐसा ही मोह है जो उसकी याद एक साल दो साल तीन साल आती रहती है, आंसू टपकते रहते हैं, वो बेचारा जहाँ गया होगा वहां भी वो दुखी होता होगा, इसलिए स्मृतियों का परिवर्तन गुप्त रीति से करो कि मुझे पास्ट के संबंधों के आधार से जो स्मृतियां बनी उस लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करना है। दूसरा परिवर्तन है अपनी दृष्टि का परिवर्तन। बाबा ने हम सबको पहला ऑपरेशन जो किया बाबा ने वो हरेक की दैहिक दृष्टि का ऑपरेशन किया। आप एक दूसरे को देखो, बात करो, मिलो, हमेशा ये आत्मा पार्ट बजा रही है, आत्मा खेल खेल रही है। इस शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति है जिससे ही हमारा स्नेह है। इस शरीर तो विनाशी है, दृष्टि परिवर्तन हो जाए, सिविल दृष्टि बन जाए, केवल आत्मा पर ध्यान जाए, काला गोरा रूप रंग जिस पर आत्माएं आज अपनी शक्तियों को नष्ट कर रही हैं उसकी बजाय एक दृष्टि बन जाए। हम सब एक पिता के बच्चे एक घर से आए और अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये आत्माएं हैं, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। बाबा ने ये बहुत पार्ट पक्का किया और सब बच्चों को कराया ब्रह्मा बाबा ने। दृष्टि परिवर्तन हो जाए, दृष्टि सिविल हो जाए, क्रिमिनलिटी समाप्त हो जाए, किसी के रूप रंग पर आत्मा आकर्षित न हो, बहुत गुप्त पुरुषार्थ। क्योंकि इसी दृष्टि ने अनेक विकृतियां ले आई, दृष्टिकोण परिवर्तन हो गए। इसलिए देखने की मना नहीं है, बाबा ये नहीं कहता है सूरदास की तरह तुम अपनी आंखें ही फोड़ दो, है आंखें, लेकिन इन के होते हुए हम तीसरे नेत्र का प्रयोग करें। तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अच्छा अभ्यास कर लो गुप्त रीति से। दृष्टि ही आत्मा पर जाए, शरीर जैसे दिखाई नहीं दे रहा, ये गुप्त अभ्यास दृष्टि परिवर्तन का है। दृष्टि से भी सृष्टि बदलती है। इसलिए बाबा ने हमें कहा बच्चे अपनी जनरल दृष्टि का परिवर्तन करके आत्मा को देखने का अच्छा अभ्यास करो। सूक्ष्म वृत्तियां तीसरी बात है। वृत्तियां संकल्प से भी बहुत गहरी हैं। संकल्प में बात आती है, पता चलती है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको क्लास करा रहे हैं, संकल्प भी उठ रहे हैं, उनका पता चला है। लेकिन वृत्तियां इतनी सूक्ष्म हैं जो कहां कहां भटक जाती है। मैंने कई बार इसको बहुत अच्छा अभ्यास करके देखा है। कई बार मैं बाबा की मुरली चल रही है, मैं टाइप कर रहा हूँ, कान सुन रहे हैं, ध्यान भी इधर है, एकाग्र भी है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म वृत्तियां कहीं दूसरी जगह सैर कर लेती हैं। और वृत्तियां वहां जाती हैं जहां पर कहीं आसक्तियां होती हैं। जिधर भी कोई सूक्ष्म में भी अच्छा लगता है, व्यक्ति अच्छा लगता है, वस्तु अच्छी लगती है, उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ा हुआ है। अब बैठे हुए यहाँ है, बात हमसे कर रहे हैं और वृत्तियां उधर सैर कर रही हैं। ये वृत्तियां उपराम और अनासक्त बन जाएं, इसमें बहुत वेहद का वैराग्य चाहिए। जब तक वेहद का वैराग्य अंदर से नहीं आता, ये संसार असार है, कोई सार इसके अंदर नहीं है, तब तक वृत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बहुत सूक्ष्म है और इस पर अटेंशन अगर दोगे कि मैं अपनी वृत्तियों को बिल्कुल निर्लिप्त बना लूं, निर्दोष बना लूं, अनासक्त बना लूं, कहीं पर भी सूक्ष्म वृत्तियां भी चंचल ना हो, क्योंकि वृत्तियों से वाइब्रेशन बनता है, वाणी से वायुमंडल बनता है। तो अगर हम सबने अपनी वृत्तियों पर ध्यान दिया है, ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है, जिसने अटेंशन दिया है कि मैं वृत्तियों को परिवर्तन करना है, वृत्तियों से विश्व सेवा होती है, वृत्तियों से प्रकृति का परिवर्तन होता है, वृत्तियों से हम हर आत्मा तक पहुंच सकते हैं। बहुत सूक्ष्म सेवा, संकल्प से भी सूक्ष्म सेवा है। और बाबा अपने बच्चों को यही कहते हैं, जिस स्थान पर आप रहते हो अपनी पवित्र शुद्ध अनासक्त वृत्तियों से उस स्थान के वातावरण को परिवर्तन कर दो। ऐसी योगी आत्माएं जिस स्थान पर रहती है वहाँ का वायुमंडल बहुत शक्तिशाली बन जाता है, खींचने वाला चुंबक बन जाता है। इसलिए ध्यान देना बहुत गुप्त पुरुषार्थ है, टेंशन वाला है कि वृत्तियां कहीं पर भी आकर्षित न हो। इसके लिए दो बातों का ध्यान रखो, किसी भी व्यक्ति से विशेष प्रभावित नहीं होना। क्या कौन दे रहा है हमें, ये व्यक्ति अच्छा है, इसके गुण अच्छे हैं, सहयोगी है, स्नेही है, मददगार है, ठीक है, उसको प्रभु ने ऐसी विशेषताएं दी हैं। देने वाला दाता तो पीछे है ना, आत्माएं मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, बंधन बन जाएगा। और कलयुग के अंत में किसी भी प्रकार का बंधन न बने, इस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि हम सब बंधन मुक्त होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारी पढ़ाई है हमारी, ज्ञान हमें जो मिल रहा है वो सबको बंधनों से मुक्त करने के लिए मिल रहा है। ज्ञान लेने के बाद कोई नया बंधन हमने बना लिया, ये व्यक्ति अच्छा है, सहयोगी है, मददगार है, इसके बिना काम ही कैसे चलेगा, तो ये बंधन बहुत दुख देता है। विवृतियां उधर ही भटकती रहती है, वही व्यक्ति अच्छा लगेगा। अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं ना, कोई एक विशेष अच्छा क्यों लग रहा है। ध्यान देंगे तो पता चलेगा, अगर कहीं पर भी कोई प्रभावित कर रही है आत्मा गुणों से, विशेषताओं से, सेवाओं से, तो माना वो बंधन क्रिएट हो रहा है, वृत्तियां वहां जरूर जाएंगी। और अगर किसी व्यक्ति से आपने दुश्मनी ले ली, टकराव कर लिया, वैर विरोध में आ गए, वो अच्छा नहीं लगता, एक अच्छा लगता है एक अच्छा नहीं लगता, तो वैर और विरोध जहाँ हुआ, जहाँ दुश्मनी हो गई, जहाँ टकराव हो गया, अब बैठो योग में, वही पर वृत्तियां भटके, वही सकल सामने आएगी, उसके साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा मेरे साथ किया, तो उसी के ही गुणगान करते रहेंगे नेगेटिव रूप में भी। तो हम सबको अपनी वृत्तियों को अगर बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बनाना है तो ध्यान देना किसी भी आत्मा से अभी संगम के इस समय में न कहो से दोस्ती, न कहो से वैर। क्यों हम किसी से विशेष दोस्ती करके अपने चार्ट को खराब कर ले, क्योंकि जहाँ दोस्त मिलते हैं वहाँ क्या करते हैं, तेरे मेरे की पर चिंतन की, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, सुनते हैं सुनाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। ब्राह्मण जीवन में अगर किसी आत्मा को उन्नति करनी है तो मेरे सामने एक स्लोगन सदा याद रहता है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर हम पर चिंतन कर रहे हैं, व्यक्ति को देख करके उसके गुण या अवगुण का वर्णन कर रहे हैं, यही चिंतन है, पर चिंतन है, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, बाबा कहते हैं तीन पर काट दो तो चौथा पर लग जाएगा, पर उपकारी बन जाओगे। तो हम सब अपनी वृत्तियों को देखें, वृत्तियां किसी के भी गुण अवगुण को देख करके उसका चिंतन या उसका दर्शन तो नहीं करती हैं, उसके प्रभाव में तो नहीं आती हैं। और चौथी बात, सब ब्राह्मणों को बहुत ही समय अटेंशन देनी है, वो है बोल पर कंट्रोल। बोल बड़े अनमोल हैं, हम बोल देते हैं, जो आया बोल देते, जब आया बोल देते, दृष्टि वृत्ति स्मृति के साथ साथ बोल पर बहुत ध्यान चाहिए। बोल वही निकले जिसके अंदर कुछ न कुछ ज्ञान और कुछ न कुछ सार समाया हुआ है। इसलिए बहुत बोलने की जो आदत है ना, वो कहीं न कहीं मिक्स कर देती है। बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, मेरी महान आत्माएं मास्टर सतगुरु हो, आपके बोल इतने होने चाहिए जो रात के समय अगर चेक करना चाहो तो गिनती कर लो कि हमने इतना बोला, ऐसे नहीं जो आया बोला जब आया बोला। जैसे कभी कभी बाहर निकलो तो ऐसे लगता है किसी मार्केट के अंदर आ गए। हम सब बाबा के बच्चे हैं, एक एक बोल पर इतना ध्यान दें, वही बोलें जो दूसरी आत्माओं का कल्याण कर दे। इसलिए मन का मुख का मौन माना ये नहीं है, बोलना ही नहीं है, बोलो भले, लेकिन जितना जरूरी है आवश्यक है, सम्मानजनक है, दूसरों के अपने कल्याण वाला है, वही बोल बोलना। इसलिए आजकल के साधनों में कई बार मोबाइल यूज करते हैं, लोग घंटों बातें करते, कान में भी दर्द हो जाए, सुनने वाले को भी सुनाने वाले को। क्या समय नहीं जा रहा है, एनर्जी नहीं जा रही है, जो बोल रहे हैं उसमें क्या अर्थ है, क्या सार भरा हुआ है, इधर की उधर की, ये हुआ वो हुआ, ये खाया वो पिया, यहाँ घूमने गए, सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ब्राह्मण आत्माओं को बहुत ध्यान देना चाहिए कि बाबा ने हमें संगम पर ये दो शक्तियाँ, दो एनर्जी दी हैं, और जिसके पास ये दोनों एनर्जी है ना, एकाग्र है मन, संकल्प की शक्ति और बोल की शक्ति, जिसने इस दो बातों पर भी ध्यान दे दिया, उसका पुरुषार्थ अपने आप अच्छा हो जाता है, उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने अपनी दादियों को देखा, आप सबने गुलजार दादी जी को देखा है, उनकी पालना ली है, दिल्ली का अधिकतर भाई बहने पहुंचे हैं आज। गुलजार दादी को किसने किसने देखा, हाथ उठाओ, देखे तो कितने है? देखो सभी लगभग गुलजार दादी से मिले हैं, पालना ली है, बाबा से मिले या नहीं, गुलजार दादी से तो मिले हैं। लेकिन गुलजार दादी की यही दो विशेषताएं भगवान ने 48 साल तक यूज की, वर्णन की है। इस बच्ची को बाबा ने इतना यूज किया, क्यों यूज कर दिया, क्योंकि इस बच्ची ने इसको व्यर्थ नहीं जाने दिया। एक भी बोल कभी भी आप सुनो, हम लोग जाते थे पिकनिक पर, दादी को ले जाते थे इधर उधर घुमाने, शहर कराने, कुछ न कुछ बोलते थे, चुप, एक भी जवाब नहीं देना, और जवाब देना है तो 10 बातों का एक बात में, एक बोल में जवाब दे देना बस, जिसमें सार भरा हुआ हो। ऐसे नहीं बोल रहे हैं तो बोलते गए, बुलवाना पड़ता था। तो बाबा ने एक दिन कहा कि बच्ची का रथ भगवान ने क्यों लिया, क्योंकि बच्ची ने अपने बोल की एनर्जी जमा की थी जो भगवान के काम में आ गई। कितना बाबा ने बोला होगा मालूम है, कितना बोला होगा, जिन्होंने पुराने होंगे पता होगा। हम जब शुरू में हमने शुरू किया 73 से बाबा के साथ लिखने का काम, बाबा जितना बोलता था मैं लिखता था, पूरी रात हाथ से लिखता था। बाबा 7 बजे 6:30 बजे मुरली शुरू करते थे, सुबह 8 बजे तक बैठे हैं तो मैं भी बाबा के साथ ही सब कुछ लिखता रहा। एक शब्द भी इतने रात में 12 घंटे में बाबा का ऐसे निकल गया होगा, क्या बोल दिया होगा किसी को, कितने सम्मानजनक बोल, कितनी विशेषताओं का वर्णन। बाबा को नहीं पता था ये बच्चा गलती करके आया, ये बच्चा गलत है, लेकिन बाबा के सामने अगर गलती करके भी आया तो भी बाबा उसकी विशेषताएं सुना रहा है, बच्चे ने ये किया अच्छा है। उसके इतनी विशेषताएं सुना करके बाबा की शिक्षा देने का बहुत सुंदर रायल रूप हमने देखा। शिक्षा देता था ऐसे नहीं दे दिया, लेकिन शिक्षा देने का स्वरूप जो था उस बच्चे को इतना ऊंचा बता करके, तुम बच्चे ये हो, ये विशेष आत्मा हो, और फिर कहना ये बात तो अच्छी नहीं लगती, ये बात ठीक नहीं है। ऐसा प्यार से जिसे धरनी बना के बीज डाला जाता, ऐसे उसको बहुत सम्मान दे करके, सम्मान बता करके, और फिर उसको छोटी छोटी बातों पर ध्यान खिंचवाया जिससे उसको समाप्त कर सके। तो बाबा को हम सब फॉलो कर रहे हैं, तो हम अपने बोल पर जरूर ध्यान दें। और कर्म बड़े बलवान हैं, कर्म बीज हैं, जैसे संस्कार संकल्प बीज है, ऐसे संगम पर श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का समय है। इस समय का बोया हुआ बीज पूरे 84 जन्म तक हमारे भाग्य को उदय करेगा, इसलिए ध्यान देना। कोई भी श्रेष्ठ कर्म उसको ही कहते हैं, इस हाथ से करो इसको पता न चलो, गुप्त दान महापुण्य, जितना गुप्त कर सकते हो तन से करो, मन से करो, धन से करो, विशेषताओं से करो, बाबा कहता करो जरूर, लेकिन वर्णन नहीं करो, भाग्य उसी में बनता है। नहीं तो किया और वर्णन कर दिया, मैंने इतना किया, मैं ये करता हूँ, तो बाबा ने कहा कि ये तो बच्चे ने कच्चा फल खा लिया, मान मिल गया, महिमा हो गई, नाम हो गया, स्टेज पर बुला लिया गया, प्रशंसा कर दी गई, बस खत्म, किया और खाया। इसलिए अगर भाग्य जमा करना है, 84 जन्मों का भाग्य ऊंचे से ऊंचा बनाना है, तो ध्यान देना, कर्म करने की कला को सीखो, सब कुछ करो, वर्णन न हो कहीं, दिखावा न हो। बाबा के कार्य में जिसने तन मन धन समय लगाया है, भगवान उसको रिटर्न देने के लिए बना हुआ है। इसलिए हम सब बाबा को देख करके सफल करते चले, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कर्म करने की कला आ जाए, कर्म किया जाए, और करावन हार बाबा है वो उस आत्मा से करा रहा है, और दूसरा मैं आत्मा करावन हार बनकर इन कर्मिंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ। मैं अलग हूँ, ये अलग है। जितना हम करावन हार बनकर के कर्मिंद्रियों से कर्म कराएंगे, फल की इच्छा नहीं रहेगी, उतना कर्म श्रेष्ठ कर्म कहे जाएंगे। संगम युग ही है जो श्रेष्ठ कर्म का बीज बोते हैं। सतयुग और त्रेता के अंदर हमारे कर्म अकर्म हो जाते, संगम की प्रारब्ध मिलती है। द्वापर युग से जो देह मान के अधीन होकर के कर्म किए जाते, विकारों के अधीन होकर के कर्म किए जाते, वो कर्म विकर्म पाप कर्म बन जाते। अभी बाबा हमें कर्मों की गहन गति सिखा रहे हैं, इसलिए हम सब श्रेष्ठ कर्म का बीज बोते चलें, अपना ऊंचे से ऊंचा भाग्य बना लें। समय की सूचना तो सबके पास है, जानते हो, देख रहे हो, अचानक कुछ भी हो जाए पश्चाताप न करना पड़े, अरे हमें तो चांस था लेकिन मैंने गंवा दिया। तो सभी बाबा के बच्चे बहुत समझदार बन करके ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करो जो हमारा सब कुछ सफल हो जाए, कुछ भी निष्फल न जाए, निष्फल न जाए। जो कुछ शक्तियां बाबा ने दी हैं तो उसी की अमानत, इन उसके कार्य में लगे, सब सफल हो। एक भी पैसा, एक भी समय, संकल्प, श्वास, संपत्ति कहीं भी व्यर्थ न जाए, तो हम लास्ट आते हुए भी बहुत फास्ट जा सकते हैं, थोड़े समय में भी बहुत बड़ा भाग्य बना सकते हैं। बाबा कई बार इशारे में कहते हैं, बच्चे भले तुम लास्ट में आए हो लेकिन फास्ट और फर्स्ट बन सकते हो, अभी भी मार्जिन है, अभी भी टू लेट का गेट नहीं लगा है, बोर्ड नहीं लगा है। इसलिए सब ध्यान देना कि बाबा ने हमें समय दिया है, अपनी कमाई जमा करनी है, अपने इस अमूल्य समय को इधर उधर की बातों में, तेरे मेरे में, ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, कुछ भी हो रहा है, ड्रामा की सीन, हर बात एक्यूरेट है, उसमें कोई गलतियां निकाल नहीं सकता, क्योंकि इसका डायरेक्टर, इसका क्रिएटर स्वयं बाबा है। इसलिए क्यों हम नुक्स निकाले, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हो रहा, वो हो रहा, सब बहुत अच्छे से अच्छा हो रहा है, और बाबा के बच्चों के लिए अच्छा ही होना है। सतयुग आना है ना, जब हम सब उसका आह्वान कर रहे हैं। मुझे कभी कभी बाबा की ऐसी ऐसी बातें सुन करके अचानक कैसे लगता है, अरे बाबा ने इतनी बड़ी बात कही है। एक दिन बाबा ने कहा मुरली के अंदर, बच्चे इतनी बड़ी दुनिया, केवल 9 लाख बचेंगे, शिव मंत्र से परिवर्तन हो जाएगा। तो शिव मंत्र, जब बाबा ने कहा शिव मंत्र नहीं, शिव मंत्र से हो जाएगा, शिव मंत्र से हो जाएगा, तो अभी वो शिव मंत्र चलने का समय आ गया है, अभी टाइम नहीं लगेगा। इसी समय भी वो शिव मंत्र बन गया, तो पुरानी दुनिया को जाने में समय नहीं लगेगा। हम सब बच्चे अपना सब सफल करें, बस कुछ भी इधर उधर की बातों में गवाना नहीं, सब कुछ होगा, नीचे ऊपर सब दिखाई देगा। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, जो मेरे काम की नहीं है उस पर मुझे अटेंशन नहीं देना है, मैं केवल ये ध्यान देता हूँ मेरा लिंक टूटे नहीं, और कोई भी लीकेज है उस लीकेज में कहीं कुछ खत्म ना हो जाए, लीकेज को स्टॉप कर दो, बंद करो, लिंक को जोड़ के रखो, बाबा के साथ लिंक जुटी हुई रहे, यथार्थ टचिंग आएगी, उस टचिंग को मैं कैच कर सकूं। बाबा हर बच्चे को टच करता है, ऐसा नहीं करता है, सब बच्चे हैं बाबा के, बाबा हर बच्चे को कहता है बच्चे ये करना ये नहीं करना, यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना, टच करता है, लेकिन कैच करने वाले सब नंबर वार होते हैं। कैच कर सके बाबा की बातों को, बाबा के संकल्पों को, बाबा की सकास को, उसके लिए बहुत बुद्धि स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए। जरा भी इसके अंदर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। बाबा कहता है बच्चे अंतिम समय में इसमें उलझ गए तो पेपर तो एक मिनट का, एक सेकंड का आएगा और फेल हो जाओगे। इसलिए अगर पास होना है अंतिम पेपर में तो अपनी बुद्धि को बहुत साफ स्वच्छ क्लीन रखो। बाबा के बच्चे आ जाओ, बच्चे कर लो, हाँ जी उलझना नहीं, तो अपनी बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर रख करके बाबा की टचिंग को कैच करो, अपने लिंक को जोड़ के रखो। और अगर कहीं छोटी मोटी लीकेज में जा नहीं सकती है तो उनको बंद करो, बस यही पुरुषार्थ है। ये नवीनता का पुरुषार्थ करते रहो तो अंत समय बहुत सुखदायी होगा, अंतमति सुगति अपने आप हो जाएगी। ओम शांति।